आज है 24 अप्रैल दिन सोमवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न, मतगणना जारी।
सेंटरिस्ट रहनुमा है इमैनुअल मैक्रों, वो 24% वोट लेकर सबसे आगे हैं। जो राइट विंग की रहनुमा है मैरी ली पेन, वो सेकंड नंबर पर आई है।
दोनों के बीच अगला मुकाबला 7 मई को। इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद जारी सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त का दावा। क्या हासिल हुआ सहारनपुर और आगरा में हिंसा की हालिया घटनाओं से?
जो पार्टी सत्ता में है उनके लोग इस प्रकार का अगर काम करेंगे, पुलिस वालों की हिम्मत कम होती है, जो गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कल को एक्शन वो कैसे लेंगे?
पाकिस्तान से वुस्तुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी और खेल खिलाड़ी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों ने पहले दौर की बाजी जीत ली है। रविवार को मतदान हुआ था और अब तक 3/4 से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी तक मिले आधिकारिक नतीजों के मुताबिक मैक्रों 23% वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि धुर दक्षिणपंथी नेता नेशनलिस्ट पार्टी की मरीन लपेन 23% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर। अब इन दोनों नेताओं के बीच दूसरे और निर्णायक दौर का मुकाबला 7 मई को होगा। इस चुनाव के नतीजों को यूरोपीय यूनियन के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। नतीजों के बाद मैक्रों ने कहा, मैंने पिछले महीने भी और आज एक बार फिर फ्रांस के लोगों के गुस्से और डर को देखा है, साथ ही बदलाव को लेकर उनकी भूख को भी देखा है। यही कारण है कि उन्होंने आज उन दो पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो पिछले 30 साल से सत्ता में थी लेकिन जिम्मेदारियों से दूर थीं। ये थे इमैनुअल मैक्रों के शब्द। उधर नेशनलिस्ट पार्टी की मरीन लेपेन ने कहा है कि अंतिम चरण में पहुंचने की उनकी जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा,
Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes.
अब फ्रांस के लोगों को आजाद करने का समय आ गया है, वक्त आ गया है ऐसे घमंडी लोगों से छुटकारा पाने का जो फ्रांस के लोगों पर ये हुक्म चलाना चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये थे मरीन लपेन के शब्द। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इमैनुअल मैक्रों को फोन कर उन्हें जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति पद के अन्य दो उम्मीदवारों बेनवा एमो और फ्रांसवा फियो ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और मतदाताओं से दूसरे दौर में मैक्रों का समर्थन करने की अपील की है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर कई यूरोपीय नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने पहले स्थान पर रहे मैक्रों को जीत की बधाई दी और यूरोपीय यूनियन का पक्ष लेने के लिए उनकी तारीफ भी की। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख ज्या क्लाउडे जंकर और यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख फेडरिका मोगरिनी ने भी मैक्रों को बधाई संदेश भेजा है। दूसरे स्थान पर रही मरीन लीपेन को भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। रूस के निचले सदन की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख मार्टिन कोसाचेव ने कहा है कि लपेन बदलाव की एकमात्र उम्मीद हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक नए अध्ययन में पता चला है कि सैन्य साजो सामान पर खर्च के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्टॉकहोम में SIPRI की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल रूस का सैन्य खर्च $69 अरब से अधिक था। अमरीका लगभग $600 अरब के साथ इस सूची में पहले नंबर पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमरीकी युद्धपोत USS कार्ल विंसन को डुबोने के लिए तैयार है। जंगी जहाज कार्ल विंसन पश्चिमी प्रायद्वीप में दो जापानी युद्धपोतों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और इसी हफ्ते कोरियाई प्रायद्वीप पहुंच रहा है। अमरीका ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसका कूटनीतिक सब्र अब खत्म हो रहा है। यूनिस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल 13 खिलाड़ियों ने ही अब तक ये मुकाम हासिल किया है। यूनिस खान ने किंगस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। अफगानिस्तान के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को हुए तालिबान हमले में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है। तालिबान ने मजार शरीफ में सेना के एक शिविर पर हमला किया था। बीबीसी समाचार।
एक नए दिन नए हफ्ते की शुरुआत कीजिए बीबीसी हिंदी के साथ। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न हो गया है, मतगणना जारी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले पेरिस फोन लगाया और वहां बात की मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता हुसैन अक्सरी से।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम है। 8 बजे पोलिंग खत्म हुई, वोटिंग खत्म हुई, 9 बजे तक तकरीबन पोजीशन क्लियर होनी शुरू हो गई थी और इस वक्त जो है वो बिल्कुल वाजे तौर पर जो एक सेंटरिस्ट रहनुमा है, एक मॉडरेट रहनुमा है इमैनुअल मैक्रों, वो 24% वोट लेकर सबसे आगे हैं। सेकंड नंबर पर जो राइट विंग एक फार राइट की रहनुमा है मैरी लिपैन, वो सेकंड नंबर पर आई है। उन्हें 21-22% वोट मिले हैं। एक रहनुमा है, उनका नाम है जॉन लुक मेलशॉन, उन्होंने तकरीबन 19-20% वोट लिए हैं, वो तीसरे नंबर पर है। जो सोशलिस्ट पार्टी है जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उसको जबरदस्त नाकामी हुई है।
ये जो नतीजे आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं, वो क्या हैरान करने वाले नतीजे हैं या इस तरह की उम्मीदें पहले से ही लगाई जा रही थी कि नतीजा कुछ इस तरह का आएगा?
जो इमैनुअल मैक्रों हैं जिन्होंने 24% वोट लिए हैं, उनके बारे में ये तवक्को थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनके और मैरी लिपैन के दरमियान सख्त मुकाबला, कांटे का मुकाबले एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन थी मैक्रों ने, उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट लिए हैं।
हुसैन अस्करी हमारे बीबीसी उर्दू संवाददाता, आप फ्रांस में हैं, पेरिस में हैं, मतदान से पहले, मतदान के दौरान और अब मतदान के बाद जमीनी हालात आपने देखे हैं, कैसा माहौल नजर आया आपको?
देखिए, कल जो ये वोटिंग का दिन था, पोलिंग हो रही थी, कल रविवार था, वैसे ही छुट्टी होती है, लोग बाहर निकले और उन्होंने जाके वोट कास्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की तरह जो इलेक्शंस में होता है कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, नारे लग रहे हैं, उस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि लोग अपने आम कामकाज के दौरान जब उन्हें मौका मिलता है वो जाके वोट डाल रहे थे। माहौल इलेक्शन का था और कोई इलेक्शन की ही बात कर रहा था, रिजल्ट्स की ही बात कर रहा था, लेकिन आम जिंदगी भी साथ साथ चल रही थी।
आम जिंदगी साथ साथ चल रही थी। और मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों के आसपास ये चुनाव लड़ा गया है?
2 मुद्दे जो थे वो छाए रहे। एक मुद्दा तो था सिक्योरिटी और दूसरा था ये जो रेफ्यूजीज हैं, जो इमिग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे ज्यादा उस पर बात हुई। कुछ अरसे से बहुत सारे यहाँ पर टेररिज्म के वाकयात हुए, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले भी बिल्कुल सेंट्रल पेरिस में शांज़ेलिज़े, जो जिसको आप पेरिस का हार्ट, पेरिस का दिल कह सकते हैं, वहां पर एक वाकया हुआ जिसमें 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लोगों ने डिस्कस की और एक खौफ की फजा रही थोड़ी सी। उसके अलावा ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनके मसले भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में यूरोप में आ रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद फ्रांस भी आ रही है, बहुत बड़ा इशू है।
हुसैन साहब, आपने अभी तक के नतीजे बता दिए, अब इसके बाद आगे क्या होगा, कैसे होगा?
देखिए, फ्रांस का जो ये इलेक्शन का सिस्टम है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट ना ले सके तो फिर ये दूसरे मरहले में चला जाता है। तो अब कोई भी, क्योंकि उम्मीदवार 50% से ज्यादा नहीं ले सका है, तो अब ये दूसरे मरहले में जाएगा और ये दूसरा मरहला होगा 7 मई को। तो जो टॉप के, जो सबसे ऊपर के जो 2 उम्मीदवार हैं, इमैनुअल मैक्रों और मैरी लिपैन, इन दोनों के दरमियान अब बिल्कुल 1-to-1 मुकाबला होगा 7 मई को।
ये थे पेरिस में मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता हुसैन अस्करी। आइए लौटते हैं भारत, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां कल नगर निगम के चुनाव हुए। कुल मतदान हुआ 54%, 55% से भी कम। प्रतिष्ठा दांव पर आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी को वापसी की उम्मीद। पूरी रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
दिल्ली में जोरदार प्रचार अभियान के बाद कल तीनों नगर निगमों के लिए हुए मतदान में वोटरों का उत्साह राजनीतिक दलों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक 1.3 करोड़ मतदाताओं में से करीब 54% वोटर ही मतदान केंद्रों तक पहुंचे। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने मतदान कम रहने की वजह ईवीएम मशीन की खराबी और गर्मी को बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए सवाल किया कि पूरी दिल्ली से ईवीएम खराबी की रिपोर्ट आ रही है, वोटर स्लिप धारकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ईवीएम को लेकर सवाल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उठाए। उधर दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव के दौरान 18 ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ा क्योंकि उनमें बैटरी या फिर बटन संबंधित शिकायतें आई थी। उन्होंने बताया हैक करने जैसी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली। सवाल केजरीवाल से भी हुआ। उनसे पूछा गया कि क्या ये चुनाव दिल्ली सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह देखे जा रहे हैं, तो उनका जवाब था,
चलो देख लेंगे एक दो दिन बाद क्या होगा।
केजरीवाल ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय में एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी की साख तय करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं,
उनके लिए अब एक परीक्षा का एक और बड़ा या बल्कि लगभग मेरे अनुमान से आखिरी मौका है कि यदि वे एमसीडी के चुनाव में भी जीत जाते हैं तब तो मान लिया जाएगा कि दिल्ली कम से कम उनकी मजबूत आधार भूमि है, पर यदि वे एमसीडी में भी हार जाते हैं तब फिर वो कमजोर होती जाएगी उनकी जो जमीन।
उधर मतदान खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जीत के दावे करना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सुनिए।
मैं तो ये कहूंगा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता ने भाजपा को हाथों हाथ लिया है, एग्जिट पोल आ रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के, उससे तो साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रही है।
जीत का दावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये 26 अप्रैल को नतीजे आने के साथ ही साफ होगा।
ये थी वात्सल्य राय की रिपोर्ट। श्रोताओं, पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में हिंसा की दो घटनाएं सामने आई हैं। दोनों ही घटनाओं में सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी कहे जाने वाले संगठनों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे हैं। इस मामले पर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख और अब बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह से बात की।
किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की घटना जो है, चाहे आगरा में हुई हो चाहे सहारनपुर में हुई, जो मीडिया में आया, दुखदायक घटना है। और अगर हमारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, वास्तव में गलत है, और मेरा पूरा विश्वास है कानून उसमें अपना काम करेगा।
इस तरह की घटनाओं से पुलिस प्रशासन के मनोबल पर कितना असर होता है?
निश्चित रूप से बहुत ही इसका नेगेटिव इसका असर पड़ता है। अगर एसएसपी के मकान पर जाकर के इस प्रकार से हमारी जो है लोग जो है एक भीड़ न केवल भीड़ नहीं मोब बन करके इस प्रकार का अगर हमला करती है, ये गलत संदेश न केवल पार्टी के लिए है लेकिन प्रशासन के लिए भी है। जो पार्टी सत्ता में है उनके लोग इस प्रकार का अगर काम करेंगे, पुलिस वालों की हिम्मत कम होती है, जो गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कल को एक्शन वो कैसे लेंगे।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी ये बात कही है, पुलिस प्रमुख ये कह रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि जो संगठन जिनको माना जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी के करीबी हैं, बार बार कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं?
इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी में सभी तरह के तत्व होते हैं, लेकिन पार्टी का जो वरिष्ठ हमारा नेतृत्व है वो इस बात को बार बार कहता रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे माननीय हमारे योगी जी हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, सभी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार बनी है 15 वर्षों के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कानून व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, अराजकता थी, उसमें हमारा कर्तव्य है, पार्टी के कैडर्स का, सबका ये कर्तव्य है, हम ऐसा कोई भी काम न करें उससे पार्टी बदनाम हो और हमारी अपनी ही सरकार उसमें बदनाम हो।
ये थे मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख और अब बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन और बीजेपी सरकार की छवि और भूमिका पर चिंता जता रहे थे। बात अब बिहार की। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदा बेन बीते शनिवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार पहुंची, जहां उन्होंने तेलिक साहू समाज के कार्यक्रम में शिरकत की, और उनका ये दौरा, ये कार्यक्रम कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर से बात की।
हम लोगों को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह अचानक उनका कार्यक्रम बिहार के लिए बनेगा और यहाँ वो आएंगी। ये भी लगने लगा था कि अगर वो आएंगी तो फिर हो सकता है कि कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे या कुछ लोग इसको एक मुद्दा बना के, मोदी विरोधी खेमे के लोग हैं वो इस पर कुछ बयान देने लगे, इस तरह की आशंका भी जो थी, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो बिहार के नेता हैं उनकी कोई दिलचस्पी इसमें दिखी नहीं कि वो भी उनकी इस यात्रा के साथ है। एक और बात इसके साथ जो जुड़ी हुई लगती है वो ये कि शायद ये इशारा रहा हो केंद्र की तरफ से या प्रधानमंत्री के मूड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा होगा कि इस पर कुछ बोलना शायद कहीं विवादास्पद न हो जाए।
भारतीय जनता पार्टी की दूरी की वजह कहीं ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अगर जसोदा बेन एक खास समाज के सम्मेलन में हिस्सा ले रही है तो उससे संदेश उतना सही नहीं जाएगा?
जो भी हमारे देश में राजनीतिक दल हैं या जो बड़े या छोटे राजनीतिक नेता हैं, वो समाज में जातीय आधार पर चुनावी समीकरण बिठाने या उसका लाभ लेने में पीछे रहते हों, ऐसा है नहीं। और हो सकता है कि प्रमुखता के साथ इस बात को सामने नहीं लाके अंदर अंदर ही कुछ ऐसा सोचा गया होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि चलो ये आएंगी तो एक तरह से फायदा ही होगा। एक ऐसा वर्ग है, भामाशाह के समारोह में जाना और निश्चित रूप से उस समुदाय से जुड़े लोगों के बीच उनका पहुंचना, तो ये किसी और दल को इसका फायदा तो मिलता हुआ नहीं दिखता है। और जसोदा बहन ने भी जो वहां जो बातें कही हैं, उससे ये नहीं लगा कि कोई नाराजगी उनको अपने पति प्रधानमंत्री को लेकर है या भारतीय जनता पार्टी से है, बल्कि कुछ हद तक यही लगा कि ये सब बातें वो नहीं सोच रही हैं, समझ रही हैं, यहाँ वो आई हैं और उनका ये मकसद हो सकता है उस समाज को किसी एक पक्ष में उनका रुझान पैदा करना, परोक्ष रूप में ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ मामला लगता है। उनका ये आना आकस्मिक लगा है बिहार के लोगों को, प्रतिपक्षी दलों में विरोधी दलों में भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखी है।
ये थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर। घड़ी की सुइयां लग रहा है आज बहुत तेजी से भाग रही हैं। भारत में सुबह का वक्त है, 6:45 हुए हैं। आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। दिनेश जी,
दिल्ली के अखबारों में दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो है लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करीब 54% जो है वोटिंग हुई थी और नतीजे 26 तारीख को आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान को प्रमुखता से छापा है। महबूबा मुफ्ती, नीति आयोग की बैठक थी कल, उसके लिए कल दिल्ली में थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे उन सब से अपील की कि उनके राज्यों में जितने कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं कृपया उनको जो है सुरक्षा दें। क्यों,
नीति आयोग की बैठक तो कल हो गई, अब आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है उनकी।
हाँ, कई अखबारों में ये सूत्रों के हवाले से है कि जी कि वो राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से अलग से फिर मुलाकात कर सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने नीति आयोग की ही बैठक को अपनी पहली खबर बताया है। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों से 2022 के लक्ष्य तय करने को कहा है कि तब जो है 75 साल भारत की आज़ादी के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य बताएं कि उनके क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए। साथ ही अखबार ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में गैर मौजूदगी को बॉक्स में छापा है कि ये लोग नहीं आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आईटी कंपनी टीसीएस और इंफोसिस पर H1 वीजा के गलत इस्तेमाल के अमरीकी अधिकारियों के आरोप को प्रमुखता से छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि लॉटरी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर ये कंपनियां H1B वीजा के कोटे में बड़ा हिस्सा हासिल कर लेती हैं। तो इस तरह की भी खबरें, हालांकि ये खबरें जो है काफ़ी समय से आ रही हैं और भारत इस पर अपना पक्ष भी रखता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में ट्रक में भैंस ले जा रहे 3 युवकों की पिटाई की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी।
कल काफ़ी बवाल हुआ इस पर।
जी, इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ और मेनका गांधी ने इस पर कुछ सफाई भी दी थी, क्योंकि ट्रक सवारों को पीटने वाले खुद को पीपल फॉर एनिमल PFA NGO का मेंबर बता रहे थे,
पशु कल्याण संस्था।
जी, तो केंद्रीय मंत्री जो हैं इसकी संस्थापक हैं, तो उनके ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में इसकी PFA की कोई यूनिट नहीं है। नई दिल्ली और दैनिक जागरण ने जो है पासपोर्ट की खबर को प्रमुखता से छापा है। अब पासपोर्ट के लिए हिंदी में भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ये जो है ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब तक जो है सिर्फ
सारा कामकाज इस तरह का अंग्रेजी में ही होता है।
जी, अमर उजाला की सुर्खी है, मोदी ने की जनवरी से दिसंबर तक के वित्त वर्ष की वकालत।
अच्छा, और जल्दी लाने की बात हो रही
जी,
है
जी। अभी तक मार्च से लेके वो अप्रैल से लेके मार्च तक वाला चलता था, अब जो है जनवरी से दिसंबर तक का
नया साल, नया वित्तीय वर्ष।
जी, असल में वित्त जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी साथ
दोनों
साथ
होने साथ करें, हालांकि इस पे अभी कुछ सहमति बनी नहीं है कहीं।
जी जी, कोई इसमें इसके अलावा एक और खबर है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो उम्र है जो उसकी क्या कैटेगरी की जाए वो 60 होनी चाहिए, ये ऐसा सरकार का विचार है कि वही वरिष्ठ जो उनको वरिष्ठ नागरिक है उनको क्या माना जाए, कब उनको पेंशन दी जाए, तो 60 साल तय करने की।
हालांकि अलग अलग सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो अलग अलग है, कहीं 62 है, कहीं 60 है, पेशे के हिसाब से,
पेशे के हिसाब से है। अमर उजाला में ही एक खबर है कि यात्री सुविधा के लिए रेलवे का मेगा ऐप हिंद रेल अभी लॉन्च करने जा रहा है, वो जून में इसको लॉन्च कर देगा। इससे यात्रियों को पहले से सभी ऐप से जो पहले के अभी तक ऐप चल रहे हैं उनसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ट्रेनों के आवागमन की जानकारी, देरी, रद्द होने, इन सब की जानकारी उनको मिल सकेगी।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी समाचार पत्रों की समीक्षा विस्तार से बताने के लिए। श्रोताओं अब एक बात बताइए, पिछले दिनों जब नवाज शरीफ का नाम सुर्खियों में आया पनामा लीक्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तब आपके दिमाग में एक नाम और आया होगा। जी हाँ, वो नाम है इमरान खान का। इन दोनों ही शख्सियत के बीच, इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच तू डाल डाल मैं पात पात जैसा खेल चलता रहा है। आइए सुनते हैं पाकिस्तान से वुस्तल्ला खान की ये साप्ताहिक डायरी।
हो सकता है भारत में मनोरंजन के पायदान पर पहले बॉलीवुड और फिर राजनीतिक नाटक हों, मगर हमारे पाकिस्तान में फिल्म तो बनती नहीं, इसलिए मनोरंजन के पायदान पे 1 से 10 तक राजनेता और उनकी नीतियां ही कथक रही हैं और नाटिया रही हैं। एक एक्ट पूरा होता नहीं कि दूसरे का पर्दा खुल जाता है और हर बार नया खेल, नया सीन, नए एक्टर्स और ताज़ा कहानी के साथ। कल तक सब मान रहे थे कि पनामा घोटाले में जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही माना जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री की गर्दन में जो रस्सा डालना है वो छोटा है, कोई लंबा रस्सा लाया जाए, इसके लिए अदालत ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट पर अंधा भरोसा करके ये मुकदमा वहाँ ले गए थे, यानी इमरान खान, वो अब कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने नवाज शरीफ के गले में रस्सा ना डाला तो हम डाल देंगे, हम नवाज शरीफ को शर्म दिलाएंगे, उन पर अखलाकी दबाव बढ़ाएंगे और मजबूर करेंगे कि जब तक छान फटक मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक के लिए वो प्रधान मंत्रालय छोड़ के संन्यास ले लें, वरना सत्यानाश के लिए तैयार रहें। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि इमरान खान ने नौजवानी में या तो क्रिकेट खेली है या फिर अमिताभ बच्चन की वो फिल्में देखी हैं जिनमें बच्चन जी मजदूर नेता बन के खून चूसने वाले सेठ से मजदूरों को हक दिलवाते हैं। इमरान का ख्याल है कि जिस तरह क्रिकेट में गवास्कर या विवियन रिचर्ड्स एम्पायर की उंगली का इंतज़ार किए बगैर विकेट छोड़ के चले जाते थे, उसी तरह नवाज शरीफ भी करेंगे, या जिस तरह फिल्म के आखिर में जालिम सेठ अमिताभ बच्चन की मांगे मान लिया करता था और शर्मिंदा भी होता था, वैसे ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सेठ नवाज शरीफ भी करेंगे। ऐसी बातों पर इमरान पर प्यार ना आए तो क्या आए। राजनीति में पुण्यशीलता, यानी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। 5 में से 3 जजों ने नवाज शरीफ को मुलजिम और 2 ने मुजरिम ठहराया है, यानी टेक्निकली नवाज शरीफ अपने पद पे चाहें तो बने रह सकते हैं। और नॉन टेक्निकल इमरान खान को 67 वर्ष की उम्र में भी ये नहीं पता कि भारत हो के पाकिस्तान, यहाँ सियासत भावनाओं और नियमों का नहीं टेक्निकलिटी का खेल है। कहते हैं एक मिरासी गांव के चौधरी के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर गया, चौधरी आग बगुला हो गया और मिरासी को खूब पिटवाया और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। मिरासी ने उठते उठते अपनी पगड़ी सर पे जमाते हुए पूछा, तो चौधरी साहब क्या मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? मुझे यकीन है कि इमरान खान ने ये कहानी नहीं सुनी, वरना वो नवाज शरीफ को हटाने के लिए इतने उतावले ना होते। और मुझे ये भी यकीन है कि नवाज शरीफ ने ये कहानी बहुत बार सुनी है।
ये थे पाकिस्तान से वुस्तल्ला खान। जिक्र हुआ था बीच में खेल का, कल IPL में कोलकाता में कोहली, डिविलियर्स, गेल सब हो गए फेल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम 49 रन पर हो गई ढेर। कोलकाता नाइट राइडर्स आराम से जीत गया। खेल की बाकी खबरों के लिए सुनिए साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
इस अंक में चर्चा आईपीएल 10 की और समीक्षा कि क्या बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में बिग थ्री मॉडल को फिर से दोबारा लागू करवा पाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत आईपीएल 10 से। कल आईपीएल 10 में राजकोट में खेले गए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने गुजरात लायंस को 26 रन से हरा दिया। गुजरात के सामने जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो दिनेश कार्तिक के नाबाद 58 रनों के बावजूद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन बना सकी। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब ने हाशिम आमला के 65 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे। आज आईपीएल 10 में मुंबई इंडियंस का सामना राइजिंग पुणे सुपर जायंट से होगा। और अब समीक्षा आईसीसी में बीसीसीआई के रुतबे की, जो कितना घटा है, बड़ा है या फिर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका पता दुबई में होने जा रही आईसीसी की बैठक के बाद चलेगा। इन दिनों बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सितारे उसके खिलाफ हैं या फिर वक्री होकर उल्टी चाल चल रहे हैं। एक तो उसके तमाम पदाधिकारी निलंबित हैं और सारा कामकाज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति चला रही है। इसके बावजूद बीसीसीआई की तमन्ना है कि आईसीसी बिग थ्री का रेवेन्यू मॉडल एक बार फिर स्वीकार करे, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत को राजस्व का बड़ा हिस्सा मिलता है। वैसे इस मुद्दे पर भारत को बांग्लादेश का समर्थन हासिल है। आखिरकार क्यों बांग्लादेश भारत के साथ है और बिग थ्री मॉडल के पीछे भारत क्यों पड़ा है? वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन कहते हैं,
ना सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि वो बीसीसीआई के साथ साथ चलेंगे। हालांकि पहले उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर बांग्लादेश को टोर मिलते हैं इंडिया के या इंडियन टीम बांग्लादेश जाती है तो वहां पर उनका लाभ, उनका फायदा होता है, वैसे ही श्रीलंका का होगा। पाकिस्तान के साथ खैर मैचेस हो नहीं रही है तो वो अलग बात है। और ना सिर्फ छोटे बोर्ड, अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका हो या वेस्ट इंडीज हो या न्यूजीलैंड हो, जहां भी अगर इंडियन क्रिकेट टीम जाती है तो उस क्रिकेट प्लेइंग कंट्री का भी फायदा होता है और आईसीसी का भी होता है। तो क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड है इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन टीम के लिए, तो बीसीसीआई की यही सोच रही है कि रेवेन्यू शेयरिंग में उन्हें भी ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए।
तो क्रिकेट में बढ़ती पैसे की मारामारी और इसका असर यहाँ तक है कि बीसीसीआई ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान तक नहीं किया है। तो क्या अब ये माना जाए कि अगर आईसीसी भारत का कहना नहीं मानेगा तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी से खुद को अलग कर किनारा करेगा, और वो भी तब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर भारत के हरभजन सिंह हैं? अयाज मेमन कहते हैं,
इशारा तो इसी तरफ है, क्योंकि 25 तारीख का कट ऑफ डेट था चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस करने का। एक दिन की मोहलत मांगी है शायद बीसीसीआई ने, कहा है कि हम 26 को अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 8-10 हफ्ते से ये काफी चर्चा हुई है कि अगर बीसीसीआई की पोजीशन को ना माना गया तो टीम, इस हद तक बात हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट भी कर ले इंडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसा होगा। ये जरूर हो सकता है कि टीम में से कुछ की प्लेयर्स जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें ना भेजे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी नहीं आना चाहिए, वो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है और अगर इंडियन क्रिकेट जो है इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी है, तो लीडरशिप दिखानी चाहिए, ना कि एक विवाद में फंस के रहना चाहिए।
खैर अब ये समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को ये कहकर बड़ा झटका दिया कि वो आईसीसी की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
जी हां, आज बस इतना ही, अब दीजिए विदा, लेकिन पहले सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों ने पहले दौर की बाजी जीत ली है। धुर दक्षिणपंथी नेता नेशनलिस्ट पार्टी की मरीन लेपेन दूसरे स्थान पर हैं। अब इन दोनों नेताओं के बीच दूसरे और निर्णायक दौर का मुकाबला 7 मई को होगा। एक नए अध्ययन में पता चला है कि सैन्य साजो सामान पर खर्च के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अमरीकी युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन को डुबोने के लिए तैयार है। यूनिस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल 13 खिलाड़ियों ने ही अब तक ये मुकाम हासिल किया है। अफगानिस्तान के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को तालिबान हमले में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है। तालिबान ने मजार-ए-शरीफ में सेना के एक शिविर पर हमला किया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। दिनेश उप्रेती के साथ संदीप सोनी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।